नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि पहली नज़र में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अभी तक इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन इस खुलासे को गौतम अडानी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 पन्नों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। उस एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और कुछ दिनों के अंदर ही गौतम अडानी की संपत्ति को करोड़ों की चपत लग गई। बड़ी बात ये रही कि इस मुद्दे में विपक्षी पार्टियों के ध्यान को भी आकर्षित किया और देखते ही देखते इस पर जमकर सियासत हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB डेयरी सर्विसेज ने शुक्रवार को कहा कि वह महिलाओं के स्वामित्व वाली 3 दूध उत्पादक कंपनियां स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बजट 2021-22 में शुरू की गई राज्य की महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। NDS ने एक बयान में कहा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित परियोजना को तकनीकी सहायता दे रही है। UPSRLM और NDS के बीच हुए एक सहयोगी समझौते के तहत 3 महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियों को शामिल किया गया। ये 3 महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां हैं सामर्थ्य दुग्ध उत्पादक कंपनी, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक कंपनी एवं श्री जनी दुग्ध उत्पादक कंपनी। NDS ने कहा कि ये कंपनियां एक साथ 17 जिलों के 2800 से अधिक गांवों में 1.5 लाख महिला डेयरी किसानों का नामांकन करेंगी और संचालन के 5वें वर्ष तक प्रतिदिन 7 लाख लीटर से अधिक दूध खरीदेंगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क के एक वकील ने माइक्रोसॉफ्ट पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के डेटा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उसे सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को एक पत्र लिखकर मामले में ऑडिट कराने की मांग भी की। ये पत्र मुख्य रूप से ट्विटर द्वारा माइक्रोसॉफ्ट पर उसके ट्वीट के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के आरोपों पर केंद्रित है, लेकिन इससे आगे चलकर डेटा के दुरुपयोग को लेकर दोनों कंपनियों में विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मस्क ने इससे पहले एक ट्वीट में माइक्रोसॉफ्ट और उसके साझेदार OpenAI पर ChatGPT जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उन्नत तकनीक विकसित करने में ट्विटर के डेटा का अवैध रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अप्रैल में किए गए इस ट्वीट में मस्क ने कहा था, मुकदमे का समय। मस्क के वकील एलेक्स सिप्रो के दस्तखत वाला पत्र भी इसी आरोप के इर्द गिर्द केंद्रित है। उसमें कहा गया कि ट्विटर के साथ माइक्रोसॉफ्ट का समझौता कंपनी को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के डेटा का स्वीकृत मात्रा से अधिक या अनुपयुक्त इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करता है। एयर इंडिया के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को कहा कि एयरलाइन और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस साल अब तक 3,900 से अधिक लोगों को भर्ती किया है। उन्होंने कहा कि इनमें 500 से अधिक पायलट और 2,400 से अधिक चालक दल के सदस्य शामिल हैं। टाटा समूह की अगुवाई में एयर इंडिया अपने परिचालन में सुधार कर रही है और बेड़े के साथ ही परिचालन का विस्तार किया जा रहा है। एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक ने शुक्रवार को एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक संदेश में कहा, इस साल की शुरुआत से अब तक 500 से अधिक पायलटों, 2,400 चालक दलों के सदस्यों और 1,000 अन्य कर्मचारियों को AI और AIX ने भर्ती किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती और प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम किया गया है। एयर इंडिया में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस में लगभग 1900 कर्मचारी हैं, जिनमें तृतीय पक्ष के कर्मचारी भी शामिल हैं। अमेरिका ने ताइवान के साथ एक सामान्य व्यापार समझौता किया है, जो इसके लिए वाशिंगटन के समर्थन का संकेत देता है। गौरतलब है कि ताइवान को लेकर चीन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा कि अमेरिकी ताइवान पहल के तहत हुए इस समझौते से आगे चलकर एक बड़े सौदे के लिए मंच तैयार होने की उम्मीद है। इस समझौते की घोषणा बृहस्पतिवार को हुई। इसमें अन्य बातों के अलावा सीमा शुल्क पर लाल फीताशाही को कम करने और ताइवान में अपने उत्पाद लाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतीक्षा समय में कटौती शामिल है। समझौते के तहत छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के कई उपाय भी किए गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेंगलुरु की एक ऑनलाइन शिक्षा कंपनी के 8.26 करोड़ रुपए जब्त किए। ये कंपनी पूरी तरह से चीनी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रित वाली है। ईडी ने बताया कि विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी एक जांच के तहत ये जब्त की गई। ईडी ने एक बयान में कहा कि पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कोष को विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून की धारा 37A के तहत जब्त कर लिया गया है। बयान के मुताबिक कंपनी ओडा क्लास ब्रांड नाम के तहत ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करा रही थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।